हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नि हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 31 श्लोक क्रमांक 6। यद् आदिष्टं भगवता शिवेन अदोक्षजेन च तद्ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रायशः शपितं प्रभो। यदादिष्टं भगवता शिवेनादोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः शपितं प्रभो। यदादिष्टं भगवता शिवेनादोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः शपितं प्रभो। यदादिष्टं भगवता शिवेनादोक्षजेन च तद्गृहेषु शब्दार्थ यत जो आदिष्टम आदेश दिया गया था भगवता महापुरुष शिवेन शिवजी द्वारा अदोक्षजेन भगवान विष्णु द्वारा च भी तत वह ग्रहेषु गृहस्थी में प्रसक्तानां हम आसक्तों द्वारा प्रायशः लगभग प्राय शपितं विस्मृत प्रभो हे स्वामी। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय शरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिवजी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन में रहते जाना एक प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जिस तरह जीवित रहना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.10 में मिलती है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपितु उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके। श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुञ्जतः। मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई आवश्यकता से अधिक भोग करना चाहता है तो वह ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। समस्त प्रचेताओं ने ग्रस्त आश्रम में रहने की अपनी भूल स्वीकार की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेष रूप से श्रीमान राधेश्याम प्रभु, जिनसे मैं पहली बार 18 साल पहले अप्रैल 2002 में मिला था, और उनके संग के कारण ही जो भी मैं कृष्ण भावनामृत से जुड़ पाया या सेवा कर पाया उनके आशीर्वाद से मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी भक्तों की सुंदर श्याम प्रभु रूप हुसैन प्रभु इत्यादि, मुझे इतना वरिष्ठ भक्तों के समक्ष बोलने का अभ्यास नहीं है, और थोड़ा व्यवस्थापन में व्यस्त होने के कारण मैं ज़्यादा विचार भी नहीं कर पाया श्लोक के ऊपर भी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर हम भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आशीर्वाद के माध्यम से जरूर भगवान और भक्तों की सेवा में कुछ बोलने का प्रयास कर पाएंगे। यह जो श्लोक है, यह जो प्रचेता है, अभी प्रचेता 10 लोग एक साथ हैं, तो जैसे पांडव कहते हैं या प्रचेता कहते हैं, तो उनमें से कौन बोल रहा है ये पता नहीं, लेकिन वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और उनकी विचारधारा इतनी समान है कि उनको एक साथ ही संबोधन किया जाता है। प्रचेताओं का प्रचेता प्रचेतस ऊचु प्रचेताओं ने कहा, तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है कि 10 लोग एक साथ एक ही विचार व्यक्त करें। लेकिन हम पाते हैं कि पूरे पूरे जो प्रचेता का उपाख्यान है उसमें कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि कौन से प्रचेतन है। 10 प्रचेताओं का अलग अलग नाम भी नहीं आता है। वैसे जैसे कि नवयोगेंद्र हैं तो नवयोगेंद्र के 9 नाम हैं अलग अलग, कवि, हबीब और करभाजन से। और पांडव हैं 5, तो पांडवों के भी नाम हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, लेकिन प्रचेताओं के नाम भी नहीं। वो लोग भगवान की सेवा करने में इतने एकत्रित थे कि वो हालांकि 10 अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन उनको एक ही भाग, एक ही यूनिट के जैसा उनको संबोधन किया जाता है। तो ये जो प्रचेता है ये नारद मुनि के आगमन पर यह श्लोक बोल रहे हैं, नारद मुनि का स्वागत करते हुए। तो प्रचेताओं का जो संदर्भ है, ये चर्चा मैत्रेय मुनि और विदुर मुनि के बीच में चल रही है हरिद्वार पर। तो पूरा जो तीसरा स्कंध और चौथा स्कंध है इसमें विदुर और मैत्रेय संवाद है, और उस संवाद को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और उस संवाद को सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनको बता रहे हैं। तो प्रचेताओं का संदर्भ पहले के कुछ अध्यायों से शुरू होता है, जहाँ पर वो महाराज प्राचीन वरिष्ठ जो उनके पिता हैं उनके कहने पर नारायण सरोवर में जाकर तपस्या करते हैं। तो हालांकि प्राचीन वरिष्ठ उस समय पर कर्मकांड में लिप्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा, और पुत्रों ने वहाँ पर शिव जी का संग प्राप्त किया, और शिव जी के संग से रुद्र गीत नाम की प्रार्थना उन्होंने सुनी, और जलाशय के अंदर एक साथ रह करके उस प्रार्थना का उन्होंने गान किया। जैसे हम 16 माला करते हैं तो वो लोग उस प्रार्थना का गान करते थे और उससे प्रसन्न होकर के भगवान वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं, और प्रचेता भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप मेरी कृपा से आपका जो इंद्रिय शक्ति है वो भी कम नहीं होगी, आप इंद्रिय भोग भी करेंगे लेकिन आप मेरा विस्मरण नहीं करेंगे, मुझे भूलेंगे नहीं, और इस प्रकार से सही समय आने पर आप मुझे पूरी तरह प्राप्त करेंगे। तो प्रचेताओं का जो चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचेताओं ने तपस्या करके गुरु के आदेश से भगवान को प्रसन्न करके भगवान के आदेश अनुसार उन्होंने सेवा की, लेकिन आज का जो श्लोक है उसमें प्रचेताओं की विनम्रता का वर्णन आता है, और प्रभुपाद जी इसमें जो इंद्रिय भोग से क्या क्या कैसे नहीं करना चाहिए, क्या खतरा है, उसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जो युक्त वैराग्य है उसके बारे में, और प्रचेताओं की विनम्रता के बारे में, और प्रचेताओं के प्रशिक्षण के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रचेता 18,000 साल जैसा भगवान ने उनको आदेश दिया उसके अनुसार राज्य करने के बाद, जैसा इस अध्याय की शुरुआत में आता है कि उन्होंने अपनी पत्नी मृषा, उसको उनका जो पुत्र था दक्ष, उनके संरक्षण में रखा, और वे स्वयं फिर से तपस्या करने के लिए वन में चले गए, जहाँ पर जांजलि मुनि का आश्रम था वहाँ पर जाकर वे तपस्या करने लगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भागवतम चौथा स्कंध के शुरू में भी दक्ष का वर्णन आता है, जहाँ पर दक्ष शिव जी को अपराध करते हैं और फिर एक बकरी का सिर प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर शरीर त्याग देते हैं, और चौथे स्कंध के अंत में भी दक्ष का ही वर्णन आता है, उन्हीं का पुनर्जन्म होता है और उनका वर्णन आता है। तो प्रचेता सही समय आने पर गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ले पाए क्योंकि उन्होंने शुरू में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो अगर ब्रह्मचारी जीवन का प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को नहीं है तो यह प्राय असंभव है कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन को त्याग पाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आसक्त होना ये जीव के लिए एक स्वाभाविक लक्षण है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना तया अपहृत चेतसा। तो जो भोग और ऐश्वर्य है उसके प्रति गाढ़ी आसक्ति निर्माण हो जाती है गृहस्थ जीवन में, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह यम अहम मामेति। तो गृहस्थ जीवन में अहम मामेति की भावना बहुत प्रबल होती है, मैं भोगता हूँ, तो इसके कारण भोग करने की इच्छा होती है। और मैं स्वामी हूँ, मैं चीज़ों को, आई एम द प्रोपराइटर, चीज़ों का स्वामी हूँ, इसलिए ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो गृहस्थ जीवन में भोग और ऐश्वर्य के संपर्क में आना स्वाभाविक है, और इनके संपर्क में आने के बाद गाड़ी आसक्ति निर्मित हो जाती है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। और ऐसी आसक्ति निर्मित होने के बाद फिर तया अपहृत चेतसा, जो चेतना है जो कि भगवान में लगनी चाहिए, वो चेतना का अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाती है। जैसे अपहरण करना मतलब कोई बलपूर्वक किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर लेकर के जाए जहां पर वो नहीं जाना चाहता है, उसको अपहरण कहते हैं। तो तया अपहृत चेतसाम, जब व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है तो फिर बुद्धि का अपहरण हो जाता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाध होना विधीयते, तो फिर आत्मा के व्यवसाय में बुद्धि नहीं लगती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जो आत्मा का वास्तविक व्यवसाय है भगवान की सेवा के बारे में सोचना, उसमें बुद्धि नहीं लगती है। आत्मा के व्यवसाय में बुद्धि नहीं लगती है, समाध होना विधीयते, उसके बाद समाधि नहीं प्राप्त कर पाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से क्योंकि ग्रस्त जीवन का स्वभाव है भोग और ऐश्वर्य के संपर्क में आना, और उसके संपर्क में आने से आसक्ति स्वाभाविक रूप से निर्मित हो जाती है, तो अगर किसी को पहले से प्रशिक्षण नहीं है तब वो ग्रस्त जीवन में आकर के वापस सही से निकल नहीं पाता है। तो प्रचेताओं ने शिव जी से मंत्र प्राप्त करके, तपस्या करके, जो जल के अंदर रह करके तपस्या की और भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तो उस प्रशिक्षण के कारण सही समय पर आने पर प्रचेता जो है ग्रस्त जीवन त्याग कर फिर से वानप्रस्थ जीवन की ओर चले गए। तो इसलिए जो वैदिक सभ्यता है उसमें ब्रह्मचर्य जीवन जो है, ब्रह्मचारी जीवन और ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करना है, ये सभी आश्रमों के लिए नींव की तरह है। जिस प्रकार से अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग प्रकार से बनती है, किसी प्रकार से ऊपर का स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन नीचे नींव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य व्रत है, जो ब्रह्मचारी का जो प्रशिक्षण है, वही बाकी जो तीन आश्रम है उनके लिए बुनियाद का काम करता है। और ब्रह्मचारी आश्रम का जो प्रशिक्षण है उसकी नींव क्या है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोरितम आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदम। तो जो चार, जो ये ब्रह्मचारी जीवन का एक परिभाषा सूत्र जैसा है, तो चार जो इसमें लक्षण बताए हैं उन चारों में गुरु से संबंध आता है। अर्थात ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति को या जो शिष्य है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार गुरु की सेवा को और गुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का ध्येय बनाए। क्योंकि अगर गुरु की सेवा और गुरु की प्रसन्नता ध्येय नहीं है तो बाकी किसी और कार्य के लिए या और उद्देश्य के लिए इंद्रिय संवित कर पाना या इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है। केवल व्यक्ति जब गुरु की सेवा और गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है तभी वास्तविक रूप से इंद्रियों को संयम कर पाना संभव होता है। तो इसीलिए गुरुकुल में ले जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि किस प्रकार से जो सारा जो उनका कार्य है वो गुरु को समर्पित करना है। तो हम पाते हैं जैसे कि धौम्य ऋषि के शिष्य थे अरुणी और वेद और उपमन्यु, तो तीनों की कथा में पाते हैं कि किस प्रकार से गुरु उनको प्रशिक्षण देते हैं कि केवल जो भी जाते हैं और जो भी हम प्राप्त करते हैं वो ला करके गुरु को समर्पित करना। और गुरु जब बुलाएंगे, हालांकि भिक्षा मांगने के लिए शिष्य जाता है, अन्न इत्यादि धान्य लेकर के आते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी लकड़ी भी शिष्य चुनकर लेकर के आते हैं, और खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भी शिष्य लेके आते हैं, और गुरु माता जो है भोग बनाते हैं फिर भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना सब कार्य करने के बाद भी, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सोत्र मई की, जय श्री श्री गौन की, तो इतना सब होने के बाद भी, सारी सामग्री जुटाने के बाद भी अगर गुरु उनको आदेश नहीं देते हैं या बुलाते नहीं है तब जो शिष्य है वो भोजन नहीं करता, प्रसाद प्राप्त नहीं करता। तो ये प्रशिक्षण है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार ही जीवन को जीना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए ही जीवन को जीना है। तो जैसे राधेश्याम प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे कि कैसे एक जो शेर है या चीता है उसको कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो भुर्जन प्रभु अपना जो पुस्तक है आर्ट ऑफ टीचिंग उसमें बताते हैं कि ये जो शेर और चीता है ये इतना समझ जाता है कि यह व्यक्ति मेरा भर्ता है,
अगर मैं इस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मेरा भोजन और मेरा संरक्षण, मेरा पोषण इस व्यक्ति से आएगा। तो वो कहते हैं कि जितना जो व्यक्ति जिसका प्रशिक्षण हो रहा है, मान लीजिए शिष्य और गुरु है, तो जिस मात्रा में, जिस प्रतिशत में शिष्य गुरु के ऊपर निर्भर कर रहता है और सोचता है कि गुरु ही मेरे भरता है और गुरु को प्रसन्न करने से ही मेरा कल्याण होगा, जितना प्रतिशत वो उतना सोचता है उतना ही प्रतिशत उसको प्रशिक्षण मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर 50% ये सोचता है कि गुरु जी मेरे सर्वोपरि हैं, गुरु जी का आदेश मुझे पालन करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो 50% ही उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। प्रशिक्षण कोई कला या इत्यादि की जो चीज़ें हैं वो एक अलग स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविक प्रशिक्षण है कि भौतिक चीज़ों से अनासक्त होना और भगवान के सेवा और भगवान के सुख से आसक्त होना, और यह बिना गुरु के आदेश के और बिना गुरु की सेवा के कतई संभव नहीं है। बाकी जैसे हमको कार चलाना सीखना है या फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो यह अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, कला है, लेकिन चेतना का जो प्रशिक्षण है भौतिक अनासक्ति और भगवान के सुख से आसक्ति, ये बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव नहीं है। तो यह प्रशिक्षण का मुख्य भाग रहता था कि किस प्रकार से गुरु की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानकर भौतिक चीजों से व्यक्ति अनासक्त रहता था और भगवान की सेवा से, भगवान को प्रसन्न करने से आसक्त होता था। ऐसा प्रशिक्षण होने के बाद जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, वह यह जानता था कि मुझे क्या साक्षात्कार प्राप्त करना है। कोई नया साक्षात्कार प्राप्त नहीं करना, साक्षात्कार पहले से शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन केवल श्रवण करने से साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह अनुभव करके उसी साक्षात्कार को आत्मसात करना चाहता है, उसी साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम लोग कॉलेज में जब कोई प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में, तो कुछ नया नहीं करते हैं, जो जो हमने ऑलरेडी पुस्तक में पढ़ा हुआ है वो हमको पता है कि ये इसका जो जो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसका वैल्यू यही आना चाहिए, तो और ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए, वो हमको पहले से पता है। और कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते करते वो नहीं भी आता है तो भी हमको पता है कि वैसा ही आना चाहिए, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा, उसको बना देते हैं वैसा। हम यह जानकर कि अंतिम निष्कर्ष क्या आना है उसके हिसाब से हम उसका रीडिंग बना देते हैं। तो उसी उसी प्रकार से जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको यह पता है कि मुझे क्या साक्षात्कार वास्तव में प्राप्त करना है। उसको ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं कि उसे कुछ नया साक्षात्कार मिलता, उसको पता है, शास्त्र बताते हैं गृहस्थ आश्रम किस प्रकार से आसक्ति का आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी है जितना कि एक ब्रह्मचारी की ब्रह्मचारी आश्रम में। ऐसा नारद मुनि जो सातवां स्कंध है उसमें गृहस्थ जीवन का जो कर्तव्य है उसमें बताते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कंसेशन नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी एक गृहस्थ भक्त भी गुरु के प्रति उतना ही समर्पित और उतना ही अकाउंटेबल है जितना एक ब्रह्मचारी शिष्य। तो क्योंकि प्रजेताओं को उस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और भगवान का आदेश प्राप्त हुआ, इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वे आसक्त नहीं हुए। और इसी प्रकार से सही समय आने पर वे जो अपनी पत्नी थी मृषा, देखिए यह भी एक प्रकार का इंद्रियम संयम है कि प्रचेता 10 अलग अलग राजा थे, अलग अलग व्यक्ति थे, उनमें से कौन राजा बना यह भी वर्णित नहीं है, और 10 लोगों का विवाह एक ही स्त्री के साथ हुआ। क्षत्रियों में एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन 10 होते हुए भी, 10 क्षत्रिय होते हुए भी पूरा आजीवन एक ही पत्नी से विवाह किया और एक ही पुत्र की उत्पत्ति की। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण होने के कारण वे सारी चीजों को भगवान की सेवा से जोड़कर देख पाए, और उनका जो गृहस्थ जीवन था वो भी एक आदर्श गृहस्थ जीवन होकर भगवान की सेवा के रूप में सारे कार्य उन्होंने किए। तो इस प्रकार से जब गुरु के प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर लेता है, तभी वह वास्तविक रूप से युक्त वैराग्य का पालन कर सकता है। युक्त वैराग्य की जो नींव है वह है कि व्यक्ति को जो संबंध ज्ञान है उसका पूरा, उसमें पूरी श्रद्धा है और उससे कुछ हद तक उसका साक्षात्कार है। अर्थात व्यक्ति जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, अहम भगवतो अंशोस्मि सदा दासोस्मि सर्वथा, मैं भगवान का अंश हूँ और मैं सदा और सब स्थितियों में भगवान का दास ही हूँ। इस संबंध ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति युक्त वैराग्य का पालन नहीं कर सकता है। युक्त वैराग्य के अतिरिक्त शास्त्रों में कई अन्य प्रकार के वैराग्य का वर्णन है, जैसे कि फल्गु वैराग्य, जो श्रील रूप गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं। ऐसी चीजें जो भगवान की सेवा में उपयोग की जा सकती है, जब व्यक्ति उनको छोड़ देता है या उनको उपयोग नहीं करता है तो उसको फल्गु वैरागी कहते हैं। प्रभुपाद जी जैसे एक व्यक्ति का फोटो उनको दिखाया शिष्यों ने, जहाँ पर कुछ धन रखा हुआ था और व्यक्ति पूरा दूर से ऐसे देख करके फोटो दिखाया। प्रभुपाद जी ने कहा सारा धन लेके आओ और मैं उसको ऐसे आलिंगन करता हूँ, उसके साथ मेरा फोटो खींचो। तो क्योंकि प्रभुपाद जी अपने लिए धन के आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान की सेवा के लिए पूरे संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते थे। जिस प्रकार से हनुमान माता सीता को भगवान राम से मिलाना चाहते थे, इसीलिए एक शुद्ध भक्त भी भगवान की संपदा को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी थे, तो वहाँ का जो सबसे कीमती होटल था वहाँ पर रुके हुए थे। तो रिपोर्टर लोगों ने पूछा आप स्वामी होकर के इस होटल में रुके? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो स्वामी होकर एक पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ, लेकिन पेड़ के नीचे रहने से आप लोग मिलने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए हम इस होटल में रुके। तो इस प्रकार से युक्त वैराग्य का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो भगवान के साथ अपना संबंध जानता है और भगवान की सेवा करना ही उसकी एकमात्र इच्छा है। अन्यथा अपने स्तर पर अगर व्यक्ति चीज़ों का चुनाव करता है, छोड़ देता है, तो उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं, क्योंकि सब चीज़ों का भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। दूसरे प्रकार का वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। तो जब व्यक्ति एक एक कठिन परिस्थिति से जाता है या सामने देखता है कि अरे अचानक से ये व्यक्ति कल हमारे साथ बात किए, कल हमने चर्चा की कि अखबार में कौन सा समाचार आया है और उसके बाद उन्होंने चाय कॉफ़ी पी और आज नहीं रहे, तो व्यक्ति को जब एक शौक लगता है तो थोड़े समय के लिए उसको भी लगता है कि जीवन निरर्थक है, जीवन व्यर्थ है, भगवान की भक्ति ही एकमात्र सार्थक साधन है। तो वो व्यक्ति शमशान तक जाते जाते उस व्यक्ति को जलाने तक उसके अंदर वैराग्य की भूमिका रहती है। वापस आने के बाद फिर से व्हाट्सएप मैसेज देखता है और फिर चिंतामग्न हो जाता है, अभी ऑफिस जाना है, अभी ये करना है, तो वो ज़्यादा नहीं टिकता। और एक वैराग्य होता है मर्कट वैराग्य। तो मर्कट वैराग्य मतलब जैसे कि बंदर होता है, तो बंदर एक प्रकार से वैरागी दिखता है, कोई रहने का घर नहीं होता है, कोई 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, इंडिपेंडेंट बंगलो, कुछ नहीं होता है उसके पास, और खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, कुक फूड नहीं खाता है, रॉ फूड जो मिलता है वो खाता है। तो एक प्रकार से रहने के लिए कोई निवास नहीं है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, कोई किसी प्रकार का जीन्स टी शर्ट इत्यादि नहीं पहनता है, लेकिन तो एक प्रकार से वैरागी दिखता है, खाने के लिए नहीं है, भाला ना खाई भी भाला ना पड़े भी, तो कुछ खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में काम वासना इतनी ज़्यादा है कि अनेक बंदरियों से संबंध रखता है। तो इस प्रकार एक मर्कट वैरागी, जो प्रभुपाद जी कहते थे राधा कुंड में बाबा जी रहते हैं और बीड़ी और विधवाओं से आसक्त रहता है, तो इस प्रकार के मर्कट वैराग्य। लेकिन वास्तविक वैराग्य है युक्त वैराग्य, जिसमें व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए जो उपयोग किया जा सकता है, जो सेवा में लग सकता है, उसको व्यक्ति स्वीकार करता है और अपने मनोधारणा के अनुसार चीज़ों को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का कार्य नहीं करता है। तो इसको करने के लिए गुरु से संबंध ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अगर संबंध ज्ञान नहीं है, भगवान के प्रति दास्यता का भाव नहीं है, तब व्यक्ति युक्त वैराग्य का पालन नहीं कर पाएगा। युक्त वैराग्य का नींव है कि स्वयं को भगवान का दास मानना और फिर जो शास्त्रों का कथन है और जो गुरु की आज्ञा है उसके अनुसार चीज़ों का उपयोग करना। युक्त वैराग्य के नाम पर कभी कभी हम लोग कुछ भी करके बोलते हैं ये तो भगवान का प्रसाद है या भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन हमारा क्या अधिकार है ये हमको जो हमारे ऊपर गुरु वर्ग के भक्त हैं या हमारे शिक्षा गुरु इत्यादि उनके आदेश अनुसार हम क्या कर सकते हैं उतना ही उपयोग करना चाहिए। भगवान की सेवा में सब कुछ उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारा अधिकार कितना है उस अधिकार के अनुसार हमको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटरनेट है या फिर सोशल मीडिया है, तो इसको कौन व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर सकता है ये क्षमता की बात है, हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका अपना इतना बल है कि हम उनको भगवान की सेवा में उपयोग करने की जगह ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमको माया की सेवा में लगा देंगे पूरे रूप से। तो इसके लिए सचेत रहना चाहिए। तो इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब अत्याहार का वर्णन करते हैं उपदेशामृत में, तो बताते हैं कि आहार का अर्थ होता है भोजन। सभी इंद्रियों के लिए अपना अपना भोजन होता है, जैसे आँखों के लिए देखना भोजन है, कानों के लिए सुनना भोजन है, और मुख के लिए, जिह्वा के लिए खाना भोजन है। तो कहते हैं कि हर एक इंद्रिय का अपना आहार होता है और इंद्रियों को अपना आहार स्वीकार करना ही होता है। अगर इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, आहार स्वीकार नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। जीवित रहते हुए व्यक्ति को इंद्रियों का आहार स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन अत्याहार क्या है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है? अगर जो इंद्रियों का जो आहार है उसको व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन उसको भोग इच्छा से स्वीकार करता है, यह सोचकर स्वीकार करता है कि इसको लेने से मुझे आनंद आएगा, इसको लेने से मुझे प्रसन्नता होगी, तो इस चेतना से जो व्यक्ति इंद्रियों का आहार स्वीकार करता है उसको अत्याहार कहा जाता है और यह भक्ति के लिए प्रतिकूल है। भोग वृत्ति से जो भी चीजें हम इंद्रियों से करते हैं वो अत्याहार का अंग मानी जाती है, मतलब ब्रॉडली उसमें बताते हैं ऐसे। हालांकि अत्याहार हम कहते हैं कि क्षमता से अधिक आहार खाना, लेकिन अगर और ऊपर दृष्टि से देखें तो इंद्रियों के लिए जो आवश्यक है उन चीजों को भी स्वीकार करना, लेकिन भोग वृत्ति बनाए रखना, वो अत्याहार आता है। लेकिन भोग वृत्ति को गुरु के आदेश के अनुसार उसको सेवा वृत्ति में बदलना चाहिए। गुरु जी सिखाते हैं कि किस प्रकार से चीजों को भोग दृष्टि से नहीं देखकर उसको सेवा दृष्टि से देखना चाहिए। तो उस संदर्भ में कई सारे उदाहरण हैं किस प्रकार से जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो लोग प्रसक्त आसक्त होते हैं, वह गुरु के आदेश के अनुसार ही उनकी चेतना परिवर्तित होती है, और गुरु की सेवा से आसक्त होने के बाद उनका जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है वो चली जाती है। और विशेष रूप से एक धनुर्दास जो श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक बहुत उत्तम शिष्य थे, तो उनके बारे में वर्णन आता है कि जब पहली बार श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उनको देखा श्रीरंगम में, तो धनुर्दास एक जो स्त्री थी उनके ऊपर एक छाता पकड़े हुए थे, और कोई कहता छाता पकड़े हुए थे, चावर भी कर रहे थे, जो भी था छाता पकड़े थे, चावर कर रहे थे, और पूरा रंगनाथ का जो प्रोसेशन है वो चल रहा था। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने देखा उनको कि अरे भगवान का इतना बड़ा प्रोसेशन चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, उसमें भी ये व्यक्ति इतना इसके अंदर आसक्ति है कि इतना सब होने के बाद भी स्त्री में आसक्ति। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया और फिर रंगनाथ का दर्शन कराया। तो रामानुजाचार्य की प्रार्थना से जब धनुर्दास ने वास्तविक रूप से भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया, तब परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम दृष्टवा निवर्तते के तात्पर्य में आता है कि भगवान का सौंदर्य ही एक ऐसा चीज है जिससे जो जीव की भोग वासना है, जो भोग वृत्ति है, वो सेवा वृत्ति में बदल सकती है। उसी से जीव को एक ऊंचे स्वाद का अनुभव होता है भगवान के सौंदर्य का। इसीलिए हमारे आचार्यगणों ने अनादिकाल से अलग अलग विग्रहों की स्थापना की है और वहां पर सेवा इत्यादि की व्यवस्था की है, जिससे कि लोग आकर के भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करें, और भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करके जो भौतिक दर्शन की लालसा है, जो बाकी चीजों के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति भगवान के प्रति आसक्ति में बदल जाए। तो इस प्रकार से धनुर्दास को जब रामानुजाचार्य की कृपा प्राप्त हुई तो वो पूरी तरह से उस स्त्री से अनासक्त हो गए। तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति से जाने का मार्ग केवल जो गुरु और वैष्णव की कृपा ही एकमात्र मार्ग है। वो कृपा प्राप्त होने के बाद ये सारी चीजें भोग और ऐश्वर्य होने के बाद भी फिर उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि अगर अत्याहार नहीं करना है तो जो हमको इंद्रियों के लिए आवश्यक है उसको भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अनासक्त से विषयान, उसमें आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। यदारम उपंजय निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्चते। तो कृष्ण से उसका संबंध है और हमारी उसमें आसक्ति नहीं है। अगर हमारी उसमें आसक्ति नहीं है तो हमारी आसक्ति कहीं तो होनी चाहिए। इसीलिए अगर हमारी इंद्रिय भोग में आसक्ति नहीं है तो भगवान की सेवा में जब आसक्ति होगी तभी ये युक्त वैराग्य का स्तर संभव है। और उसके अतिरिक्त लास्ट में ये जो प्रचेता यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर नारद मुनि अभी वहाँ पर आए हैं उनको संग देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, और यहाँ पर 3 श्लोकों में प्रचेताओं का जो विनम्रता है उसका वर्णन आता है कि प्रचेता हालांकि भगवान के आदेश अनुसार राज्य किया, सही समय आने पर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम किया, स्वीकार किया, लेकिन फिर भी विनम्रता बस कहते हैं कि शिवजी और भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को हम प्राय भूल चुके हैं। तो ये भक्ति का लक्षण है। जहाँ भी हम भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो भक्त लोग कभी भी अपना जो ज्ञान है या वैराग्य है उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब भी एक वरिष्ठ भक्त से वार्तालाप करते हैं या उनसे आदेश प्राप्त करते हैं तो अपने को हीन दिखाते हैं, चाहे वो विदुर और मैत्रेय मुनि का संपर्क हो। विदुर जी मैत्रेय मुनि से जब शुरू में प्रश्न करते हैं तो मैत्रेय मुनि का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि आप हमको भगवान के संबंध में बताइए। हालांकि अगर तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो विदुर जी भगवान के अत्यंत निकट हैं। हाँ, विदुर जी का भगवान ने स्मरण किया जब भगवान उद्धव से बात करते हैं, तो विदुर जी के घर पे भगवान आकर के प्रसाद स्वीकार किया, तो विदुर जी भगवान के निकट हैं तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो। और विदुर जी यमराज जी का अवतार है, तो यमराज जी तो 12 महाजन्म से एक है, लेकिन फिर भी विनम्रतावश होकर के मैत्रेय मुनि के प्रति समर्पण करते हैं और उनसे 2 कैंटो पूरे श्रवण करते हैं। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जो कि विष्णु राठ हैं, जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है और जो भगवान का दर्शन करके भगवान के इच्छा और आज्ञा अनुसार पूरे राज्य को चलाते हैं, लेकिन जब श्रृंगी का श्राप मिलता है तो कहते हैं ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो गया था इसलिए भगवान ने श्राप के रूप में आकर के मुझे इससे अनासक्त किया है। तो यह एक लक्षण है भक्तों की विनम्रता का। जब नंद महाराज के घर पर गर्ग मुनि आते हैं तो नंद महाराज भी ऐसे कहते हैं कि ये महान लोगों का लक्षण है कि वो विचरण करते हैं और विचरण करके हम जैसे जो ग्रस्त हैं, जो ग्रस्त जीवन में फंसे हुए हैं, जो संग लेने के लिए नहीं जाते हैं, उनको आकर के संग प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जब नारद मुनि वसुदेव जी के महल में जाते हैं तो वसुदेव जी हालांकि भगवान के पिता हैं लेकिन फिर भी उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमको दिव्य ज्ञान दीजिए। और नारद मुनि फिर नवयोगेंद्र महाराज निमि का संवाद बताते हैं, उसमें फिर से निमि महाराज नवयोगेंद्र का स्वागत करते हैं। प्रथु महाराज जो भगवान का पालक शक्ति के अवतार हैं, वो 4 कुमारों का इतना दृढ़तापूर्वक, इतना तीव्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और उनसे श्रवण करते हैं। तो यह एक विनम्रता का लक्षण है कि प्रचेता अपना जो स्थिति है, गृहस्थ जीवन की स्थिति है, उसका वर्णन करते हैं कि हालांकि हमने शिव जी से और साक्षात भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त किया लेकिन फिर भी अब उनको भूल चुके हैं। तो ये विनम्रता बहुत ही विशेष गुण है और केवल ग्रस्तों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सन्यास लेने के बाद फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं और सबसे पहले सार्वभौम का उद्धार करते हैं। जो पहला जो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद प्रचार किया वो सार्वभौम को किया। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने के लिए निकलते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ और आपने मुझे प्रचार किया, मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, जो वैष्णव सेवा में और विग्रह सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है वह एक सन्यासी को भी आशीर्वाद देने के लिए सक्षम है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं जो कि गृहस्थ हैं और जाति की दृष्टि से शूद्रों में उनकी गणना की जाती है, लेकिन वहां पर भी महाप्रभु उनसे श्रवण करते हैं और कहते हैं कि मायावादी सन्यासी आमी कृष्ण ही जाने, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मुझे कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, आप मुझे कृष्ण के बारे में श्रवण करें। तो ये भक्तों का विशेष गुण है कि जिस प्रकार से भी जो भी तर्क वो लगा सकते हैं नम्र होने के लिए वो लगाते हैं, उस प्रकार से तुलना करते हैं कि वे स्वयं को विनम्र भाव से प्रकट कर सके। इस प्रकार से कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के सामने समर्पण करते हैं तो कहते हैं कि जगाई मदाई हमसे श्रेष्ठ है, तो वो ऐसा एक टेबल बनाकर कंपेयर नहीं करते हैं। अच्छा, उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हम भी ब्राह्मण में जन्म हुए, उन्होंने इतने पाप कृत्य किए, उन्होंने गोमांस खाया, शराब पिया, इतना सब कुछ किया, हमने ये सब नहीं किया। ऐसा कभी कभी 2 टीवी के बीच में या 2 कार के बीच में तुलनात्मक दृष्टि से तुलना की जाती है, लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो कार है या हमारा जो टेलीविज़न है या हमारा मोबाइल है इसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं, इसमें ज़्यादा गुण हैं, बाकी चीज़ें बेकार हैं। लेकिन वैष्णव की मानसिकता ऐसी नहीं रहती, एक वैष्णव की मानसिकता रहती है कि वो उस दृष्टि से तुलना करता है जिस दृष्टि से वह विनम्र भाव स्वीकार कर पाता है, जिस व्यक्ति से वो विनम्रता प्रकट कर पाता है। तो हालांकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनका वर्णन आता है कि वे ब्राह्मणों की सभा में जब बैठते थे तो इंद्र के समान प्रतीत होते थे, उनका जो शारीरिक तेज था और जो शास्त्रों का ज्ञान था, कोई भी पूरे बंगाल में कोई भी व्यक्ति अगर ग्रंथ लिखता था या कोई पुस्तक लिखता था, जब तक कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उसका अनुमोदन नहीं करते थे, उसको क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रीडिंग नहीं करते थे तब तक, छापते नहीं थे तब तक, उसको मान्य नहीं होता था। ऐसा उनका बृहस्पति के समान उनका ज्ञान था, इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था, और इतना ऐश्वर्यशाली भव्यशाली उनका आवास स्थान था, और उसके साथ साथ इतना विनम्र उनका ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति सेवा करने का भाव था, जो भी वैष्णव ब्राह्मण आते थे उनको सेवा करते थे। उस इतना होने के बाद भी, और एक गुप्त वृंदावन उन्होंने बनाया था राम के लिए में ही, जहाँ पर राधा मदन मोहन की स्थापना की थी, और वहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड की स्थापना की थी। इतना होने के बाद भी जब चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करते हैं तब कहते हैं कि जगाई मदाई भी हमसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी विनम्रता का प्रकटीकरण करते हैं कि कोई अगर मेरा नाम भी लेता है तो पापी हो जाता है, जो विष्ठा का कीड़ा है वो भी मुझसे श्रेष्ठ है। तो ये भागवतम का बारंबार ये संदेश आता है कि किस प्रकार से विनम्रता ही भगवान को प्रसन्न करती है, और इसीलिए प्रचेता यहाँ पर विनम्र भाव से नारद मुनि को समर्पण करते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो उनसे फिर प्रश्न करते हैं कि आप हमको आदेश दीजिए, और श्लोक क्रमांक 8 से लेकर के 22 तक लगभग 13 बहुत ही सुंदर उपदेश है नारद मुनि के। और जैसा कल हम प्रहलाद महाराज से सुन रहे थे कि जो धन है, अभिजन है और पौरुषम है, इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो इसी प्रकार से इन इन प्रार्थनाओं में भी नारद मुनि उसके ऊपर बहुत बल देते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है, बाकी किसी और चीज़ से भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो ये बहुत ही सुंदर संदर्भ है जो आने वाले दिनों में हम अलग अलग वक्ताओं से सुनेंगे। तो आज हम प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद। You like to add something to it?
हरे कृष्ण।
बोलिए।
Can I ask you?
आपका प्रश्न भागवतम में जिस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसी प्रकार से भागवतम क्लास का एक अंग है, अभिन्न अंग है।
तो आपने आदेश दिया है तो पूछता हूँ। आदेश नहीं, परमिशन। सो एक्चुअली सेम क्वेश्चन विच आई आस्क्ड लास्ट टाइम, एक्चुअली मैं प्रयास करता हूँ कि जो नम्रता है ये बहुत साल से प्रयास कर रहा हूँ समझने का, तो आप उसकी कुछ परिभाषा बताएंगे। लास्ट टाइम आपने बताई थी वो बहुत डिफिकल्ट लगी, तो कुछ अभी भी याद है वो, और भक्ति में कुछ अंतर नहीं लगा मेरे को। भक्ति का परिभाषा और नम्रता का परिभाषा सेम ही था, तो कैसे ये बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो आपके जैसा नम्र कैसे बने? तो आप नम्रता का परिभाषा कुछ बताइए जो मेरी बुद्धि खाएंगी और किस दिन बन सकती। बहुत
तो नम्रता का अध्ययन ही कर रहा हूँ इसलिए अभी तक नम्रता का गुण आया नहीं। लेकिन मुकुंदत प्रभु आए थे तो कह रहे थे कि प्योर डिवोशनल सर्विस मींस अटर अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी, ऐसा तो उन्होंने। तो ये विनम्रता और भक्ति इसमें ज्यादा भेद नहीं है, वास्तविकता है। तो अभी कैसे क्या बनना है इसके ऊपर तो अलग अलग प्रोजी का एक लेक्चर है वो कौन सा, दैट सेक्रेट, द सेक्रेट नेकलेस, उसमें चढ़ाना भी सुनी चेना और तरोजी वा सहिष्ठ, तो वो बहुत सुंदर लेक्चर है उसमें। क्योंकि राधेश्याम प्रभु हमेशा एक अपना एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल्स से समझाते हैं, तो उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि वास्तविक रूप से जब आश्रम में रहते हैं या वॉइस में रहते हैं तो नम्रता का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार के व्यवहार को नम्र व्यवहार कहा जाता है। लेकिन जैसा प्रभुपाद जी ने अपने राइटिंग्स में और बाकी लेक्चर में जोड़ दिया है कि व्यक्ति को इस तथ्य के ऊपर जो संबंध ज्ञान है उसके ऊपर मनन करना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और कैसे सेवा करनी है, कैसे प्रसन्न करना है, इसके बारे में जो गुरु है और जो बाकी वैष्णव है उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अन्यथा भक्ति में अगर ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं तो कभी कभी एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस हो जाता है, लेकिन भक्ति जो है ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि काया मनसा वाचा से भगवान की व्यवहारिक रूप से सेवा करना, और सेवा करते करते उत्साहपूर्वक सेवा करते करते साथ में संयम रखते, क्योंकि एंथुसियाज्म चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तो सेवा करते करते ये सारे साक्षात्कार भगवान ही हृदय में प्रकट करते हैं। ये आगे जो नारद मुनि के जो श्लोक आएंगे उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, न मेधया न भवना श्रुते, न उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान जिसको चुनते हैं उसी को भगवान ये साक्षात्कार उसके हृदय में प्रकट करते हैं। जैसे कल बोल रहे थे ना प्रभुपाद जी, ददामि बुद्धि योगम तम, अगर कोई गुरु की सेवा प्रेम से और श्रद्धा से करता है, समबडी सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर लव एंड फेथ, तो भगवान उनको साक्षात्कार देते हैं। ये सारी चीज़ें एक बुद्धि के स्तर पर हमेशा नहीं समझी जा सकती। इतना समझना चाहिए कि हमारे पास 24 घंटा है, हम इसको भगवान की सेवा में किस प्रकार लगा सकते हैं वो लगाने का प्रयास कर रहे थे, इतना ही कह सकते हैं। बाकी उसका बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस नहीं मेरे पास। Would you like to add or reply?
इन्होंने प्रश्न पूछा कि ह्यूमिलिटी को कैसे समझे, तो समझने के लिए नहीं प्रयत्न करना चाहिए, उसको लागू करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स यू ब्रिंग द ब्रेन, यू ब्रिंग द इंटेलिजेंस। इस बोलने जयदत्त स्वामी महाराज बोले कि महाराज उत्साही कैसे बनना, नम्र कैसे बनना, डिटर्मिनेशन कैसे लागू करना, नहीं तो पेशेंस कैसे रखना। महाराज बोले कि इस तरह हजारों प्रश्न गुणों के बारे में पूछा जा सकता है और पूछने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। महाराज बोले कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एंथुसियास्टिक बी एंथुसियास्टिक। बोले कि जो व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करता है उसको ददामि बुद्धि योगम तम
यह
नाम आप यहाँ देते, भगवान उनको सपोर्ट देते हैं। जो लोग उसको समझने के लिए प्रयत्न करते हैं दे गेट इन टू पैरालिसिस बाय एनालिसिस, अनलेस करते 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 इंसान थक जाता है, उसको लागू नहीं कर पाएगा वो। तो शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बॉडीली लेबर्स विद ग्रेट एग्जर्शन, ये अगर इफ समबडी स्टार्ट्स लाइक आई टोल्ड दैट इफ यू वॉश द लेटरिन इन अ टॉयलेट, यू नो वॉश द फ्लोर्स वेर द डिवोटीज आर वॉकिंग, वॉश द रूम्स, सो वन इज टेकिंग सच काइंड ऑफ हार्ड एंडेवर्स, शास्त्र से यू बिकम हम्बल। बट सम पीपल से प्रभुजी समबडी हु इज क्लीनिंग ऑल्सो कैन बी प्राउड, then what? No. That means you are not interested, correct? No, you are given an instruction, you clean the toilet, you will become humble, and then you cross question. I have seen even those who are cleaning toilet are still proud. What to do? What to do? Then you remain proud, correct? No, therefore one should do execute the action by executing the instructions. You know, you put aside out of the three aspects. Jiva Goswami writes in one of his sandarbhas that for one to succeed in getting Bhagavad Sakshatkar, the first thing he is saying, one should be willing to forego one's plan and align with Krishna's plan. Not only once, several times he says, you are adamantly attached to your plan and you throw away that plan and bow down to Krishna and say, Karishye Vachanam Tava. That's the first thing he says. Second thing he says, same manner, he says, you know, submissive services rendered to Guru and trying to understand the heart of the spiritual master, what he wants from me, and exactly trying to satisfy him and please him, and not give 101 reasons how that is not practical, it's impossible for a person like me, it will not work, you know, and the world is so bad and Kali Yuga has come. So these are all people who are unreasonable people. But if somebody says that this is what my guru wants from me, at any cost I will execute it, I will please him, I will satisfy him. After doing these two things, he says, then you should do Shravanam of Bhagavatam, he says. That is the third thing he says. He says that the quality of your Shravanam is going to be totally dependent on the first two instructions. That means how you throw away your personal considerations and surrender to Krishna's will, and how you submissively try to satisfy, serve and please the spiritual master. Once you have done these two things, your heart is no more ordinary heart, it is a golden heart. And with the golden heart, you should do Shravanam of Bhagavatam. Otherwise, hearing Bhagavatam will produce adverse results. It can make us like what is his name? Great Pandita, Devananda Pandit, or Romaharshana Sutta. So Devananda Pandit was very proud, and Mahaprabhu didn't like him. So Romaharshana Sutta was not liked by Balaramji, his attitude, his behavior, or that Kaviraj, Rupa Kaviraj. So these are all examples are there in the Shastra for somebody who has studied Bhagavatam extensively and they can quote extensively, and we can't even stand in front of them. We are a fig, they are so vastly learned people. But the end result didn't come out well for their study. So I am never fascinated by a Bhagavatam study that does not produce the end result. The end result is Guru should be pleased with us, Krishna should be pleased with us. And even if Vaishnavas are not pleased with us, we should be endeavoring to please the Vaishnavas, at least. So, but if somebody adamantly is holding on to his idea that I am right, you are wrong, everybody is wrong, so then we never get anywhere. And how do you know the end result is coming well? The end result is not at the end of your life only. You know, for example, today is one day. At the end of the day, you look, how did the day go? At the end of 1 week, see, how did the last 1 week go? At the end of 1 month, you see, how did the last 1 month go? At the end of 1 year, Gaur Purnima to Gaur Purnima, see, last 1 year, what did I do? Did I make an effort to serve the devotees, please the devotees, serve Guru, serve Krishna? Or I spend my time quarreling, rumor-mongering, backbiting, leg-pulling, fighting, proving myself, bringing out my anarthas. That's what I spend my time, you know. So therefore, this is what I would say, take the whole day and see how my day is going, how my week is going, how my month is going, how my year went. So sometimes, especially for people who have uncontrolled tongue, it is better for them to withdraw from other people. Even if people call you as impersonal, there is no problem. Let people call you impersonal, you know your intentions. If you have a very bad tongue of criticizing other devotees, withdraw from the people. And whatever time you get by withdrawing from people, strongly connect to Guru and Krishna. Don't dwell on Maya in that time. Because when you withdraw from people socializing, you get some
time.
Solid time. And what we should do with that time? Connect with Guru, connect with Krishna. If you have to connect with devotees, you only should serve them. Don't try to find fault with them. Don't pull their leg. Don't trouble them. Don't harm them. Don't hurt them. If you have to connect with devotees, you serve. Otherwise, withdraw from the devotees and try to satisfy Guru, align with Krishna. If anyone with good intentions is trying to do this, he will get the inner strength. Dadami buddhi yogam tam yena mamupayantite. Krishna will do that. On the other hand, one may be thinking, I am doing a lot of shravanam. I have studied all the Acharya's commentaries and I can tell you where is what. I precisely know the things. And if somebody speaks one wrong thing in the class, I can pin him down and show the commentaries of Acharyas. We may do all that. But if we have not aligned with Krishna, and if we have not satisfied Guru, and if we have not pleased the Vaishnavas, then our heart remains dry and dissatisfied, and always it is running out of juice. So therefore, in the path of Vaishnava life, as much importance we give for Nityam Bhagavata Sevaya, equal if not more, importance we give for sadhava sadhubhushana, titikshava karunika surda sarvadekhana majata shatrava shanta sadhava sadhubhushana. That means Vaishnava sadachar is given equal importance, because reading and speaking Bhagavatam is presentation and Vaishnava sadachar is representation. So both presentation and representation have to be combined for us to actually become a properly situated Vaishnavas. Otherwise we may have knowledge, but we will not be able to give it to people. Nobody will want to hear if we give knowledge only. Or somebody has sadachar, he does not have sufficient knowledge. Still there is no problem, because he may not have to conquer the world, but he can easily please Guru, Vaishnavas and Krishna by his good sadachar. People will say, this Prabhuji is such a gem of a devotee. Only he doesn't have much knowledge to give. Once his holiness Raghunath Maharaj was selling, his great Yaduvar Prabhu was sitting next to Maharaj on the Vyasasan. Maharaj told the other Prabhu that, Prabhu, would you like to add anything? You know, something inspiring to audience. You know. And then Maharaj gave it. Thank you, Maharaj. It was a very inspiring association. Edri smiled back. You know. And then Maharaj said, Yadavar Prabhu, you know, he's a simple Vaishnava, he may not speak big words, but his character and his good behavior speaks million times, millions of valuable teachings for us. His own good behavior, that is unlike that Maharaj was telling. So, therefore, if we emphasize on the behavior, sadhachara aspect, along with that, then you can add on your shravanam, hearing and scholarship and everything else. So, it is a, so we are starting this Bhakti Vedanta Raja Vidyalaya here in Pune temple. Kanyakrishna Prabhu and Gopalcham Prabhu are leading it. They are very wonderful Vaishnavas themselves. Gopalcham Prabhu, Kanyakrishna Prabhu. So, especially when we are teaching Bhagavatam, this is one of the greatest challenges for us. We want to teach many people, we want to share the knowledge, which is a very wonderful thing. At the same time, we need to cultivate our good behavior. If we really want to keep that giving knowledge sustainable over the years, otherwise it will not be sustainable. We will give for a short while. Like one person in Kunjaberi temple, in those days when Brahmachari was there, he is no more now, he has gone away. So he wanted to start Bhakti Shastri for congregation. So he wanted my help. I asked, what do you want? Prabhu, you should tell our congregation that we are going to, don't tell my name, he said, his name, but we are going to start Bhakti Shastri, all of you should come and register the name. And first thing what people will ask,
who's giving?
Who is the teacher? Now they asked me, I said, we are still figuring out who will be the teacher and everything, I told them. So 40 people registered, they came. On the first day, he took the mic and he had brought his Bhakti Shastri certificate with him. You know, he said, then he told in Hindi, he told them, Dekho, aap congregation bhakti log maya mein pade ho, company jate ho, bhag daud karte ho, aapko padhne ke liye, sunne ke liye time nahi milta hai. Abhi hamare adhyaksh ne aapko bulaya hai, Bhakti Shastri aapko aana padega, hafte mein 2 ghanta aana padega, aur hum sikhane wale hain aapko. And then he took the certificate and showed, humne Bhakti Shastri prapt kiya hai. भक्ति शास्त्री होकर उसके बाद हम प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ऐसा मत सोचना कि किसी को भी बिठा दिया इधर देने के लिए. As that he said, next week nobody came. Next class. And then he came running to me, प्रभुजी थोड़ा फोन करके आप बोल देना भक्तों को. I said, कितने लोगों को फोन करूंगा मैं? You know, अरे 40 लोगों को फोन करूंगा मैं. प्रभुजी एक बार आप फोन कीजिए, अब आने के बाद मेरे समक्ष उनको समझा दीजिए. Then when I called one congregation member, he told me exactly what happened. Aisa hua Prabhuji, hum log inse sunna nahi chahte. After that fellow left and went, he's not in Pune temple. See, such gross things can happen. You can imagine, no? People can. And still that person doesn't understand what mistake he did. When I told him, Prabhuji, galat kuch bola kya? Certificate hai na mere paas. Aur bahar ke log maya mein padhe hai ki nahi, no? Till date he has not had understood. I think you need some more lifetimes, I think, to understand the thing. I told an example, extreme example of bad sadhachara. I am giving extreme example. Because that fellow was very learned, very knowledgeable, but he could not give the knowledge because people ran away. People ran, so people will not come in our hold, even if you want to give also. We may be ready. So through sadhachara, you attract the people. Then with whatever shravan you have done, knowledge you have given, then you can give. Many of our wise preachers also, they are loved by their people because of their good behavior. People like Shuddha Chitta Prabhu, Yugalakshara Prabhu, Sarlakshan Pondal have been going to some of the voices in Odisha. They earned a very good name. They personally cooked prasad. They personally served with their own hand. They became like elder brother, so loving and caring. Then people... See, there are Kannada Guru, for example, gives very good classes, but he's very personally, he's very, very wonderful also. In very caring and taking care of every devotee in the group, personally like an elder brother. So people will expect us that two things we should do in our life. Either you give so much love, care, good behavior, and then you can demand surrender. Or if I don't have so much good sadhachara, what I should do? Withdraw myself and reduce my expectations from people around me. And then Guru and Krishna, just do some services, poncha we can do, you know, do some worship of the deities and then pray to Lord that in this lifetime my psychophysical makeup is not very suitable. People will not hear. So I reduce my expectations from others. And after withdrawing, if at all I want to connect with devotees, only serve the devotees. Because devotees don't like to be exploited. Devotees don't like to be hurt. So try to serve the devotees. And then do as many services as you can. You can, instead of handling devotees, handle things. Yeah. And also, you can deal with deities. Deities will never become angry easily with you. Yeah. They have ocean of tolerance. You know? And you worship the deities as much as you can. And there is a great need also. Worship deities. Worship and kirtan also. Kirtan opportunity, our Mahatma Priyappa will give you. 1 hour kirtan you can do, deity worship you do, clean the toilet, and then you can serve the devotees without talking anything. Keep the mouth shut, and then Lord in your heart will help to cleanse the heart. And then our surrender to Krishna, surrender to Guru, along with service to Vaishnavas. Then we can get something called as humility. It's a very big answer. Huh? I gave another class now. Revati Prabhu ki, Srila Prabhupada ki.